मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आठवां अध्याय चल रहा है। चारों युगों में किस प्रकार से कथन है उसकी चर्चा चल रही थी। करुणान योग में केवल ज्ञान गम्य कथन होता है, इसलिए वो सूक्ष्म होता है, और बाकी के अनुयोगों में स्थूल लोगों की बुद्धि गोचर कथन होता है। चरणान योग में भी, प्रथमान योग में तो होता ही है, और अध्यात्म में भी। इसलिए करुणान योग की बात में जहां बंध वगैरह की प्रक्रिया है उसमें बहुत प्रमाणिकता की बात आती है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि करुणान योग में जो कथन होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। पंडित जी कहते हैं उसमें भी थोड़ा सा होता है, पर वो क्या होता है कि भले ही केवली ने तो सब जान लिया लेकिन समझाना तो छद्मस्त को है ना, तो उसकी समझ में आए इस दृष्टि से, जैसे कि वो न कहे सागर रूप में दो सागर से कुछ अधिक। अब कुछ का क्या मतलब होता है, तो अस्पष्ट है ना। हजार वर्ष, दो हजार वर्ष, पांच हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, अब कुछ में तो एक भी हो सकता है और लाख वर्ष भी हो सकते हैं। तो इस तरह का कथन आता है तो वो भी तारतम्य में दो प्रकार के कथनों में कहीं कहीं अंतर दिखाई दे जाएगा। क्यों लगता है केवल ज्ञान गम है तो बराबर बता देना चाहिए, लेकिन समझने वाले तो केवल ज्ञानी नहीं है ना। तो इस दृष्टि से बहुत सा कथन ऐसा आता है, जिसे जैसे कि कर्म की प्रकृतियां तो अनंत हैं, जितने प्रकार के हमारे गुणों का विकास है उतनी प्रकृतियां हैं, लेकिन हमने 8 और 148 में वर्गीकरण करके उसे समझाया। आपने देखा ना पंचाध्यायी में आता है स्वानुभूत्यावरण कर्म के 6 उपशम से। स्वानुभूत्यावरण कर्म कौन सा है? और यदि हम दादा कहें तो कहें कि देखो ये रूमाल का ज्ञान हुआ, कि क्यों हुआ? रूमालावरण कर्म के 6 उपशम से। मतलब इतने भी नाम हो सकते हर एक चीज का कि जिस वस्तु का ज्ञान हुआ तत्संबंधी कर्म का 6 उपशम था। तो इतने नाम तो कैसे रखते, केवली के ज्ञान में तो सब है लेकिन समझने आपको तो याद नहीं रहते ना, इसलिए 148 भेद किए। ऐसे ही गुणस्थानों में की बात है, 14 ही क्यों? भेद तो भावों के तारतम्य के भेद तो बहुत है, अनंत हैं, अनंत तो ख्याल में आते नहीं, तो 14 में बांट दिया। तो ये सारे करुणानी योग के जो कथन हैं उनमें भी थोड़ी बहुत स्थूलता इस दृष्टि से पाई जाती है। अदे चरणान योग में पेज नंबर 278 पे वह उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, समझ ना, पहला ही प्यारा दूसरा प्यारा ना। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। मैंने चरणान योग में दो तरह का, एक तो निश्चय सहित व्यवहार का और एक व्यवहार का। निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश क्या है कि जैसे कहा है ना कि संयम है वो सम्मदर्शन के बिना नहीं होता है, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो गया। और व्यवहार का उपदेश जब कौआ का मांस छोड़ दे, इतना ही उपकार किया। मैंने वहां पर निश्चय की तो बात समझ ही नहीं सकता है, अभी वो मांस मदरा के छोड़ने की भी पोजीशन में नहीं है और उसको अभी कल्याण हो ऐसी भावना है तो उसे ऐसा ही उपदेश देते हैं। और यहां तक लिखा है कि एक इंद्री दो इंद्री तो वो भी नहीं समझ सकते हैं, आखिर उस भील ने कौए का मांस तो छोड़ दिया ना, लेकिन एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री को क्या समझाएं। पंडित जी ने बहुत अच्छा तर्क उपस्थित किया कि और जीवों को ये उपदेश देते हैं चरणान योग में कि तुम इनकी दया पालो, इन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। जे भी जीव हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, इस तरह उनका भी उपकार किया। क्योंकि मारने पीटने वालों को उपदेश, तुम इन्हें मत मारो, तुम पीटने से बच गए ना। इस तरह जिसका जैसे संभव है वैसे उपकार करने का प्रयत्न आचार्य देव करते हैं। और अनुयोगों की पद्धति में तो देखिए, वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। और तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है व उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। अब दोनों तरह का कथन जिनवाणी में तो लिखा होगा ना, तो कहीं तो ये लिखा कि संबंध इनके बिना होता ही नहीं, आत्मज्ञान के बिना सारा क्रियाकांड शून्य है, अकार्यकारी है, कोई मतलब नहीं है, माथे का बोझा है, और वहां पर अकेले उसी का उपदेश दिया होगा। तो हम समझ लें पहले, ये तो चरणानि योग की पद्धति है, उसमें आएगा। देखो, सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, उनका तो उपकार करना इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। अभी सबसे नीचे का प्यारा देखो, वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। जो व्यवहार उपदेश माने कौन, पहले नंबर का वो अकेले व्यवहार का, निश्चय सहित व्यवहार वाला नहीं। जो अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं उसमें तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, उसमें तो यही कहा जाएगा कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, बस खत्म। और कोई कहेगा कि जब समझे बिना करेंगे तो क्या लाभ होगा, तो उसे जवाब देंगे, कोई दवाई बिना समझे नहीं खाओ खा लोगे तो फायदा नहीं करेगी, जहर को तुम समझो नहीं और खा लोगे तो मरोगे नहीं। यानी दवाई के सेवन में, जहर के सेवन में समझने की कोई जरूरत नहीं, उसके बिना ही वो फल देता है, ऐसा भी उपदेश देंगे। और जब निश्चय सहज व्यवहार की बात आएगी तो दूसरे तरह का उपदेश देंगे। तो वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। देखो कितना साफ लिख रहा, प्रथमान योग का तो उद्देश्य है ही पाप से लगाकर पुण्य में हटाना, चरणान योग में भी वही बात है। चरणान योग का जो ये हिस्सा है ना, जहां अकेले व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, वहां भी पाप से हटाकर पुण्य में लगाना है, इतना ही है उद्देश्य। अरे कि अध्यात्म में पुण्य की वो धुनाई करते हैं, कितना तेजी से निषेध करते हैं, पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न जाने बात ये है, संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आछन्न वे, ये बात कहेंगे। और यहां अकेले उसी बात का, वहां ये कहेंगे जड़ की क्रिया ऐसे क्या होने वाला है तेरा, और यहां इसी क्रिया का उपदेश देंगे। तो तुम ये अनुयोगों की स्टाइल नहीं समझोगे तो जगह कदम कदम पर विरोध भाषित होगा। कल ही मैं पढ़ रहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो एक बहुत मार्मिक बात आई शुद्धोपयोग के संदर्भ में, जो आजकल चक्कर चलता है ना कि वो सातवें गुण स्थान से होता है कि चौथे गुण स्थान से होता है। पंडित जी ने लिखा उसके बारे में, वो बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा वो करुणानियोग के हिसाब से और जितनी स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो सातवें गुणस्थान में होता है, इसलिए वहां सातवें गुणस्थान में लिखा मिलेगा। और अध्यात्म के हिसाब से आत्मा का अनुभव और उसे भी सिद्धोपयोग कहते हैं, इसलिए वो चौथे गुणस्थान से लिखा है। अब 250 वर्ष पहले टोडरमल जी ने ये निष्कर्ष निकाल लिया, अब 250 वर्ष बाद ना अध्यात्म वालों को ये बात ख्याल में थी कि और न करुणा नियोग वालों को, अब करुणा नियोग के पक्ष वाले इसलिए बुरट लगाए हुए हैं आज कि साथ में से होता है, साथ में से होता है, पहले होता ही नहीं, पहले होता ही नहीं, पहले होता ही नहीं। शुक्ल ध्यान को ही शुद्धोपयोग कहें तो वे कहेंगे चौथे काल में होता है, पंचम काल में होता ही नहीं है, वो भी कथन मिल जाएंगे। और अध्यात्म वालों ने अध्यात्म शास्त्रों का विशेष अध्ययन किया तो वहां कदम कदम पर वो आत्मा के अनुभव की शुद्धोपयोग की बात, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णनी है ना, वही शुद्धोपयोग की बात आएगी। इनमें जो हम बड़े बड़े पंडित और महाराज मिल मिल करके जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, वो टोडरमल जी ने उस जमाने में अपनी कोठरी में बैठे बैठे उसका समाधान निकाल लिया। अब लोगों को यही कहता, आप भी अपने प्रमाण निकाल निकाल के बताओगे, देखो समय सार में लिखा है, प्रथम सार में लिखा है, फलाने में लिखा है, फलाने में लिखा है, वो माता चलेगा सच्ची बात तो है, वहां जाओगे तो कर्णोलियों के अंदर देखो यही लिखा है, यही लिखा है, ये लिखा है, धवला में लिखा है, इसमें लिखा है, वो निकाल निकाल के बताएंगे, देखेंगे बात तो सच्ची कहते हैं, क्या चक्कर है, इनने बदल दिए कि इनने बदल दिए कि ये कर दिए कि वो कर दिए। अरे भाई वो अध्यात्म का कथन है तो अध्यात्म का कथन में जो आएगी अध्यात्म कथन से वो बात आएगी, और सिद्धांत का कथन है तो वहां वो भी बात आएगी। उदाहरण दिया पंडित जी ने बहुत अच्छा कि करुणानियोग के हिसाब से अब ब्रह्म जो है मैथुन संज्ञा है कौन से गुणस्थान तक रहती है, वेद कर्म का उदय जहां तक रहता है ना वहां तक रहती है, आठवें नौवें तक रहती ना, नौवें गुणस्थान तक, तो वहां तक ब्रह्मचर्य नहीं है पूरा ऐसा कहेंगे वो, और करुणानियोग और अध्यात्म मैं सातवीं प्रतिमा में ही पूरा ब्रह्मचर्य मान लेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा मंदोदय होता है तो इससे कोई ऐसी क्रिया नहीं देखी जाए, हम उसे ब्रह्मचर्य मान लेंगे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को सप्त भय से रहत पूरा निर्भय है ऐसा आत्मा कहेगा, सम्यक दृष्टि को भय ही नहीं है, और वहां भय कसाय का उदय आठवें गुण स्थान तक होता है तब वो करुणानियोग वो कहेगा। अरे झगड़े की चीजें कहां हैं? हमने इन अनियोगों की कथन पद्धति को बारीकी से नहीं समझा, इसलिए एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानकर और हमने ऐसा निकाल लिया। देखो तो वहां व्यवहार उपदेश में बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है, वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कसाय छोड़कर कुछ मंद कसाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के ना हो मन परिणाम क्रिया करता रहो परिणाम तेज ही रहे, तो श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले छोड़ दो भाई, तुम कि साहब मेरे को तो भाव ही नहीं आता है, कि तुम इसे प्रतिज्ञा ले लो और चीज को छोड़ दो तो फिर कल धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, कि मेरे परिणाम बहुत बिगड़ जाते हैं, रात में बहुत जोर की भूख लगती है, खाना ही पड़ता है, तो ये दफे ले लो उसके, मैं नहीं खाऊंगा, मर थोड़ी जाओगे, तो बाद में धीरे धीरे परिणाम भी सुधर जाएंगे। कुछ दिन तक आकुलता होगी चाहे छोड़ दो, कुछ दिन सिरदर्द होगा और बाद में ठीक हो जाएगा। अब बहुतों के तो हो ही जाते हैं, और जिनके नहीं होंगे पंडित जी कहते तो नहीं होंगे, कोई नियम तो है नहीं कि हो ही जाएंगे। कैसी विचित्र बात है, क्रिया पहले कराते हैं और परिणाम बाद में सुधर जाएंगे। और निश्चय से व्यवहार में ये कहते हैं कि ये तो दृढ़ दृढ़ की क्रिया है, इसका तुम क्या करे, तुम तो करता धरता है ही नहीं, तू तो परिणाम सुधार तो क्रिया अपने आप सुधर जाएगी, कहते जाएगी। वो ये कहेंगे तुम तो जाओ पूजा करो, दो घंटा मंदिर में बैठो, प्रवचन सुनो, हमें समझ में कुछ नहीं आता, आने लगेगा धीरे धीरे, आने लगेगा धीरे धीरे, पूजा करो धीरे धीरे मन लगने लगेगा, ऐसा कहते हैं। पहले क्रिया को शुरू कराते हैं और बाद में भाव हो जाएंगे। और कहीं कहीं ये कहते हैं भाव कि शून्य जो क्रिया है वो बिल्कुल फल नहीं देती है और ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है। तो निश्चय सहित व्यवहार का जहां उपदेश देते हैं तहां वैसा कहते हैं, और जहां व्यवहार का ही अकेला उपदेश देते हैं तहां ऐसा कहते हैं। और एक ही चरणान योग में दोनों प्रकार के कथन मिल जाएंगे, और एक ही आचार्य जब आत्मख्याति लिखेंगे अमृतचंद्र तो दूसरी बात करेंगे, और जब प्रसासिद्धि उपाय लिखेंगे तो दूसरी बात करेंगे। अहिंसा के बारे में कितना कहा कि पहले भाव खराब हो जाते हैं बाद में हिंसा होती है, पहले हिंसा पहले हो जाती है बाद में भाव खराब, कितने कितने भेद डाले, और रखा मद्य मांस मधु का त्याग, इसका त्याग उसका त्याग, कितनी कितनी स्थूल बातें हैं उसमें। आप देखिए लगता है कि ये वही आचार्य हैं कि जो परद्रव्य की क्रिया का करता आत्मा है ही नहीं, एक जीव दूसरे जीव को मार ही नहीं सकता है, और शराब की एक बूंद में इतने जीव हैं कि वे फैल जाएं तो लोक में पूर्ण हो जाएं और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, क्यों? तो ये अंतर तो अनुयोगों की कथन पद्धति का है, ये अंतर कोई आचार्यों का नहीं है। यदि एक ही आचार्य चारों अनुयोगों के ग्रंथ लिखेंगे तो उनमें ऐसा अंतर आएगा, क्योंकि वो तो कथन शैली का अंतर है। होता क्या है कि ऐसे बहुत कम होते हैं कि जो चारों अनुयोगों के ग्रंथ लिखें, हरेक की मास्टरी अलग अलग होती है, कुछ छंद अलंकार के मास्टर होते हैं, कुछ अच्छा अच्छा वर्णन करने के कविता टाइप के होते हैं, फिर प्रथमानुयोग के लिखते हैं, कुछ चरणानुयोग के विशेषज्ञ होते हैं उसमें ज्यादा रस परिपाक होता है उन्हें तो उसके ही लिखते हैं, कुछ कर्णानुयोग के विशेषज्ञ होते हैं, कुछ इतिहास के भूगोल के तो उनका लिखते हैं, कुछ अध्यात्म के रसिया होते हैं। चारों अनुयोगों को सत्य और उसका सच्चा स्वरूप तो सब मुनिराज जानते हैं जो सच्चे हैं वितरागी संत हैं, लेकिन फिर भी स्पेशलाइजेशन हरेक का एक एक में होता है। जैसे कि एक आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, तो जो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन MBBS तो सब है ना, इसलिए सामान्य जुखाम की दवाई तो सब जानते हैं और सब दे देंगे, सामान्य बुखार की दवाई तो सब दे देंगे। वो प्रैक्टिस नहीं करें, वो बताएं नहीं कि हमारे पास मत आओ, हमारे पास तो हार्ट के केस ही हम लेंगे क्योंकि हमें फुर्सत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन पहले MBBS हुए हैं और बाद में स्पेशलाइजेशन किया है उन्होंने, ऐसे आचार्य चारों ही अनुयोगों के हर आचार्य समझने के विशेषज्ञ होता है और स्पेशलाइजेशन उनका एक में होता है। कोई ऐसे होते हैं कि दो में हो जाते हैं, कोई तीन में हो जाते हैं, कोई चार में हो जाते हैं, कहते होते हैं जैसे द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी उनके हो जाते हैं, ऐसे एक अनुयोग के विशेषज्ञ, दो अनुयोग के विशेषज्ञ, तीन अनुयोग के, चार अनुयोग के। तो इसलिए वो आचार्यों का मतभेद नहीं है, वो तो उनकी शैली का मतभेद है। इससे भी गजब की एक बात और है कि वो ये कि हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि ये शास्त्र फलाने अनुयोग का है बारीकी से जाएं तो, क्योंकि अब तो सब मिक्सचर होते हैं, उसी में चरणानुयोग की बातें भी लिख देंगे और उसमें आत्मा की बात भी लिख देंगे, उसमें कर्म की फिलोसफी भी डाल देंगे, क्यों, और उसमें कहानी भी चलाएंगे। तो कहते शास्त्रों में भी ऐसा बंटवारा नहीं है, ये तो बहुत स्थूल बंटवारा है कि अपन ने कह दिया कि हरिवंश पुराण महापुराण है वो प्रथमानुयोग का है। अभी उसके अंदर जाएंगे जितना तुम्हारा तक स्वाभाचार है उससे ज्यादा विषय उसमें श्रावक के आचरण का लिखा मिल जाएगा, पूरा एक अंदर से समाचार निकाल लो। तो इसलिए वो तो विषयों का वर्गीकरण है और स्टाइल का वर्गीकरण है, किताबों के साथ में ऐसा नहीं लगा सकते हैं हम कि बोलो मोक्षनाथ प्रकाशक कौन से अनुयोग का है, निर्ज्ञान योग का है कि करुणा योग का है। कर्म की बातें भी बहुत आई और उन्होंने आगे हम कर्म अधिकार में लिखेंगे, तो कर्म अधिकार ही पूरा लिखने वाले थे, क्यों? और सात तत्वों का निरूपण तो है ही, तो द्रव्यान योग का तो अधिकार है ही। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में पूरा चरणानि योग लिख दिया और गुण स्थानों के नाम से। ये तो एंगल होता है समय समय पर। चरणानि उस वक्त लोगों का भ्रष्टाचरण हो गया था, अध्यात्म पढ़ने वालों का, खुद का बनारसी दास जी का। इसलिए उन्होंने ये अनुभव किया कि चरणानि योग की बात भी समय सार के साथ में जोड़ी जानी चाहिए कि जिससे आचरण से भ्रष्ट नहीं हो। अब उनको लिख देते सीधे श्रावक धर्म और मुनि धर्म का स्वरूप, लेकिन उनको नई दिमाग में आई कि गुणस्थानों का वर्णन करो, नाम गुणस्थान अधिकार, तो ऐसा लगता है जैसे करुणा नियोग का बात होगी इसमें। गुणस्थान मागना स्थान तो करुणा नियोग की बातें होती ना, और वो चौथे गुणस्थान में क्या क्या आसन होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ग्यारह प्रतिमाएं कैसी होती हैं, वो सारा वर्णन उन्होंने उस गुणस्थान अधिकार में लगा दिया। क्योंकि श्रावक का सामान्य आचरण किस तरह भ्रष्ट हो रहा है समय सार पाठियों का, तो उन्होंने बिना समय सार के तो ये पढ़ेंगे नहीं, दूसरी किताब में लिख देंगे अलग से किताब, तो ये हाथे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये समय सार ही हो गए ना, दूसरी किताब को हाथ लगाने से इन्हें पाप लगता है। समझ गए ना? तो इसलिए समय सार में ही गुणस्थान अधिकार नाम से उन्होंने चरणानि योग की बातें विस्तार से लिखी। बोलो, और हमारे अन्य जी पढ़ाते हैं ना गुणस्थान प्रदेश का, तो मैं पांचवें छठवें गुणस्थान का मैं सुनता रहता हूं उनका, सातवें गुणस्थान की क्लास सुनता, सब क्लास ही सुनता हूं। तो उसमें जो आज का बहुत चक्कर चलता है ना श्रावक और मुनि धर्म का स्वरूप में, अंतरंग के बिना बहिरंग क्रियाकांड से कुछ नहीं होता है, तो वो उसको खूब बारीकी से निकाल निकाल के करुणानि योग से आपको समझाते हैं, उस पर इतना वजन देते हैं, क्यों आज उसकी बहुत जरूरी है। सच्चे देव स्वास्थ्य गुरु का स्वरूप भूमिका के अनुसार कैसा होना चाहिए, तो वो उसे बताते हैं। उन्होंने गुरुस्थान प्रवेश का में उसे एंगल से लिखा भी होगा। तो ये ऐसा मिक्सर चलता है, मेरे कहने का अर्थ है, और ये चारों चीजें मिलकर के ही हमारे दिमाग को क्लियर करती हैं। तो पंडित जी ने तो खुद लिखा कि पहले किसका अभ्यास करना और बाद में किसका करना, ऐसा कोई नियम नहीं है, जब जिसका अभ्यास में तुम्हें मन लगे वो करना। और फिर तो कहते पलट पलट के खाना, पलट पलट के स्वाध्याय करना, इससे मन उब जाए तो वो पढ़ने लगना, उससे मन उब जाए तो वो पढ़ने लगना, उससे मन उब जाए तो वो पढ़ने लगना, ऐसा लगा। बोलो, अपने वो जो खाना खाते हैं ना, तो थाली लगा के पूरी आ जाए, अब पहले क्या खाना चाहिए और बाद में क्या खाना चाहिए। तो दक्षिण भारत में कोई है कि साहब पहले लड्डू खाना चाहिए, क्यों मीठा से शुरू करो, और यहां उत्तर भारत में कहेंगे मधुरेणे समापे, मीठे से अंत में खाना, मीठा अलग से रखो। वह क्या तुम्हारा बोलते क्या आता है जयपुर का मिश्री मामा, अंत में रखो और बस मधुरेणे समाप्ते, जब समाप्ति करो तो मीठे से करो। कोई कहे पापड़ कब खाना चाहिए अंत में, कोई कहे मुंह साफ करने के लिए, कोई कहता शुरू से ही पापड़ शुरू हो जाता है, पापड़ शुरू में खाओ ना तो भूख जग जाती है, भूख नहीं लगी हो तो। कोई ऐसा कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि अंत में मुंह साफ करना चाहिए, करना चाहिए ना, तो क्या खाना चाहिए। टोटामल जी क्या कहते हैं कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे जैसे खाओगे, मैं कहता क्या है सब रखा है तुम्हारे सामने थाली में, बदल बदल के अपनी रुचि के अनुसार जिनवाणी है तुम्हारे सामने, जैसे तुम्हारा मन लगे, एक में मन सदा लगता नहीं है, इसलिए जैसे मन लगे वैसे उसका स्वाध्याय करो, समस्त जिनवाणी ही है। लेकिन प्योर आत्मा की बात समझनी हो तो वो द्रव्याणि योग का जो अध्यात्म वाला प्रखंड है उसमें ही वो तुमको मिलेगी। प्रथमान योग में से वो खोजने जाओगे तो 1500 पेज का हरिवंश प्रमाण पढ़ोगे तो उसमें 2-5 पेज मिलेंगे कहीं मुश्किल से। पर वो भी किसी अपेक्षा से होंगे, कौन कह रहा, किससे कह रहा, किस संदर्भ में कह रहा, ऐसा उस अपेक्षाओं में होगा। देखो पेज नंबर 269 पे है ना, तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परमाणु परिणामों की प्रधानता है। वहां कहा था क्रिया की प्रधानता है, याद रखना। अकेले व्यवहार के उपदेश में चरणान योग में अकेली क्रिया की प्रधानता है, और निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की प्रधानता है। अब ये जो कह रहे हैं कि परिणाम के बिना क्रिया बेकार है, तो ये तो इसकी स्टाइल है, इसमें पंडित क्या करेगा। शांति सागर जी महाराज से जाकर किसी ने पूछा कि कांजी स्वामी पुण्य को हे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने समय सार रखोगे तो मैं भी यही कहूंगा, और क्या कहूंगा, जो उसमें लिखा है, जो वस्तु का स्वरूप है, वही तो कहूंगा। क्यों? तो फिर उनने कहा क्यों नहीं, हमें पूछ सकते हैं कि उनने समय सार सामने रखा ही नहीं, इसलिए नहीं कहा। इसका मतलब है समय सार के रसिया नहीं थे, कि समय सार के विशेषज्ञ नहीं थे, हम ऐसे कैसे कहें। बर्णी जी को, गणेश राजी बर्णी जी को आत्मख्याति कंठस्थ थी। तुम तो अन्ना जी को सुनाते हो तो आप समझते हो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। अरे पद तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन गद्य को याद करना और रोजाना जो उसका पाठ करते थे, बोलो, पूरी आत्मख्याति का पाठ करते थे रोजाना, तो आत्मख्याति के कितने रसिया थे। लेकिन इस जगत के सामने तो आई नहीं, मैंने प्रवचन का विषय उसे कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात जम गई थी कि लोग समझते ही नहीं है, मूर्ख हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो सात विषयों में उलझे हुए हैं, काला अक्षर भैंस बराबर है धर्म के नाम पर, इसलिए उनको अकेले व्यवहार का उपदेश देना, इसमें क्रियाओं की मुख्यता रहती है, उसका उन्होंने बस वही लगाई। देखो हमारे साधु संतों के साथ एक तकलीफ और भी है, वो प्रैक्टिकल तकलीफ है, उस पर हमें विचार करना चाहिए कि ये निरंतर घूमते रहते हैं। अब एक गांव में पहुंचे, दो दिन रुकना है, और वहां पर से भिन्न राग से भिन्न त्रिकालीधर भगवान आत्मा बताएं, अमुनिराज के नाम पर किसान औरतें बहुतें बहुत अपर लोग बहुत आ जाते हैं, जय 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 वाली, तो वो ऐसा गंभीर विषय उठा ही नहीं सकते हैं। वहां उनके सामने ज्यादा श्रोता तो कौआ का मांस छोड़ो ऐसे होते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते हो। तो अब वो उनको धीरे धीरे उसी की प्रैक्टिस हो जाती है, अब वो चीज एक तरह से उनके दिमाग में से ही निकल जाती है, वो करते 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 भी चौमासा में चार महीना रहें, कोई अध्यात्म के जीव दिखाएं और कुछ करें हो गए तो कहीं थोड़ा बहुत अवसर मिले। तो उनकी तो वो मजबूरी है, हमारी और आपकी तो मजबूरी नहीं है ना, हम तो एक जगह जम के बैठे हैं, हमारे पास तो लाइब्रेरियों के शास्त्रों के ढेर लग रहे हैं, हम तो गहराई में जाएं। बने जी ने नहीं रखा सामने, तो सब कांजी स्वामी भी उसी जमाने के थे, फिर उनने क्यों रखा। तो उनके दिमाग में दूसरी बात आई कि दुनिया तो ऐसी ही है, यदि इनके लिए हम अपना स्तर उतार देंगे और समय सार की बात नहीं करेंगे, तो जिनका जीवन समय सार ने पलट दिया, समय सार को पढ़कर जिसने हमने अपना संप्रदाय छोड़ दिया, नया धर्म स्वीकार कर लिया, ऐसा अद्भुत रत्न हमें मिल गया और वो हम नहीं बताएंगे तो ये हमारे साथ ही चला जाएगा, मर जाएगा। इसलिए अपन तो बताओ, जिसकी समझ में आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उनके भाग्य प्रमाण। और उन्होंने भरी सभा में बराबर ठोकना खूब शुरू किया। उनने एक कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी इस प्रवृत्ति की बचत करने में सबसे बढ़िया वकील का काम टोडामल जी करेंगे, जो 250 वर्ष पहले हो गए। उन्होंने ये सिद्धि सभा में अध्यात्म का उपदेश देना क्या नहीं देना, कितनी तर्क युक्तियों से सिद्ध किया, कि मूल मुक्ति का मार्ग तो इस अध्यात्म में ही है। इन्हीं से तो ऊंची बात है, कि ऊंची बात कहां है, ये तो मिथ्यात्व को नाश करके सम्यदर्शन की प्राप्ति की बात है। इसलिए मिथ्यात्वों को नहीं समझाएंगे तो क्या सम्यदर्शनियों को समझाएंगे? इसमें मिथ्यात्व के नाश का उपाय बताया है तो मिथ्यादर्शनियों को समझाएंगे? मुनिराजों को तो मिथ्यात्व भी नहीं है, असंयम भी नहीं है, तो उनको उनको क्या है? ये तर्क उन्होंने 200-250 वर्ष पहले दिए और जो स्वामी जी ने किया मानो उसको उन्होंने एक भूमि तैयार कर दी। उन्हें पुराना प्रमाण बताने को तो हो गया कि देखो पंडित टोडामल जी क्या लिख। तो इस तरह से जहां सम्यदर्शन की प्राप्ति की मुख्यता की बात हो, और वो कहते अध्यात्म का कथन बहुत सूक्ष्म है, आजकल भी चर्चा चलती है सूक्ष्म सूक्ष्म, ये टोडामल जी कहते हैं कि वो तो स्थूल कथन है, बहुत स्थूल है, बुद्धि गोचर स्थूल कथन है, सूक्ष्म तो कर्णन योग का होता है जो केवल ज्ञान गम्य कथन होता है, ख्याल में है ना। तो इस तरह से निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की प्रधानता है, उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। देखो तो कहते पहले क्रिया सुधार लो बाद में परिणाम सुधर रहेंगे, यहां कहते हैं कि नहीं परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया आपको आप सुधर जाएगी, और दोनों करुणानि योग में मिलेगा, करुणानि योग में मिलेगा। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। अब मुख्य उपदेश देते हैं इसलिए इनको अपन ने बोल्ड कर दिया और यहां लगा दो, लेकिन इसको भूल जाते हैं कि जो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देने के प्रकरण की ये बात है। अकेले व्यवहार का उपदेश देंगे तो उस वक्त ये बात नहीं है, उस वक्त ये होगी कि क्रिया सुधरेगी तो आज नहीं तो कल परिणाम भी सुधर जाएंगे, वहां ऐसा होगा। अब हम उससे संदर्भ से काट के यहां लगा दें कि परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं, नहीं है ना? वो तो दो लाइन पहले ये लिख रहे हैं और उसके संदर्भ में है कि जो निश्चय व्यवहार की बात समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते हैं वो उनके लिए वो बात नहीं है। इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहां व्यवहार ही उपदेश व्यवहार का ही उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म को ही मानना और को नहीं मानना जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है, उसका सिद्धांत करना शंकादि 25 दोष न लगाना निशंकादि अंग और सम्यक आदि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश है, सब क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रधान सम्मान की बात करते हैं। नंग दिगंबर मुनिराजों को ही मानना ऐसा लिखा हुआ सब, समझे ना, कोई परिणाम परिणाम की बात उन्होंने नहीं कहे। अब दूसरा नंबर, ये पहले का चल रहा है अभी, किसका? वो अकेले व्यवहार वाले का जो नहीं समझ सकते हैं। तो इस सम्यक दर्शन के अर्थ ये जो उपदेश दिया वो काय के लिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो अरहंत देव को ही मानो, किसी दूसरे देव के पास नहीं जाओ, ये गीत मिथ्या छुड़ाने की मुख्यता, मेरे ग्रंथ गुरु के पास ही जाओ और किसी के पास नहीं जाओ, ये देखो ये सब क्रिया की मुख्यता। दया धर्म को ही मानना, आगे कहेंगे दया में धर्म ही नहीं है, देखो यहां दया धर्म को ही मानना लिखा क्या नहीं, औरों को नहीं मानना जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा उसका सिद्धांत करना, जीवादि तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा, निश्चय की बात नहीं कर रहे ना, और शंकादि 25 दोष नहीं लगाना निशंकादि अंग व सम्यगादि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश काय के लिए है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान के अर्थ जिनमत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना, अर्थ व्यंजनादि समझे ना, वो आठ अंग पूजो सदा सम्यक ज्ञान विचार, बेहेंगे आठ अंग उनकी बात है। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, वृतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखिरी आदिक का ही उपदेश देते हैं, जैसे भील को कईयों का मांस छुड़ाया, ग्वाले को नवोकारमन जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि, जैसा जीव हो वैसा उपदेश देते हैं। ये अकेले व्यवहार वाले को ऐसा देते हैं। अब जहां निश्चय सहित, ये पहला पॉइंट था, अब व्यवहार सहित वालों का, निश्चय सहित वाले व्यवहार वालों को, जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का सिद्धांत करना, वहां कहा था व्यवहार व्यवहार तत्वों का सिद्धांत करना, और यहां कहा यथार्थ तत्वों का सिद्धांत करना, देखो लिखा क्या नहीं, कितना अंतर डाला, अभी तो कोई ध्यान ही नहीं है व्यवहार इस पर, मुख्य महाप्रकाश पढ़ते पढ़ते भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तुम्हारा हो गया अभी, ये अंश निकल गया, अभी आना है तो अच्छा है चलो। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है, ऐसे सिद्धांत सहित स्वपर का भेद विज्ञान, परद्रव्यों में राग आदि छोड़ने, वहां तो परद्रव्य छोड़ने की बात थी, पर यहां क्या है राग आदि छोड़ने, प्रयोजन सहित उन तत्वों का सिद्धांत करने का उपदेश देते हैं। ऐसे सिद्धांत से अहंतादिक के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है। ये ऐसा नहीं कहते कुदेव को छोड़ो, वो तो जब ये चर्चा करेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा और अपने आप छोड़ देंगे। आप भगवान की वितरागता का वर्णन करो, अभी कुछ देते नहीं लेते नहीं लेवे देवे तो भी भगवान नहीं, अपने अरहंत के बारे में कहो, महावीर के बारे में कहो, तो अपने आप जो भगवान लेने देने वाले होंगे वे तो अपने आप ही निकल जाएंगे, कि कहने की जरूरत क्या है, आलोचना की जरूरत क्या किसी दूसरे की। उसका निरूपण करते हैं, ये तो काल के लिए करते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए चरणानुयोग योग में कैसा उपदेश देते हैं, किनको, जो निश्चय व्यवहार सहित जिनको उपदेश देना है उनको, कितना कितना भेद डाला अंदर अंदर में। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशयादि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं, उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास, वहां क्या कहा था जैन शास्त्रों को पढ़ना, जैनेतर शास्त्रों को नहीं पढ़ना ऐसा कहा था, और यहां कह रहे हैं कि नहीं नहीं उन तत्वों को समझना, इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का ही अभ्यास स्वयमेव होता है। वो तो कहते हैं हम तो ये कहेंगे ये समझो, तो अपने आप वो चीज जहां मिली होगी वहां वर्णन करेंगे। देखो नीचे अपन कहते हैं ना कि फलानी किताब आपके कोर्स में है इसलिए आप पढ़िए, इसकी परीक्षा होगी। मालूम जब ऊपर की क्लासें पहुंच जाती एमए वगैरह में तो कैसा होता है कि आपके कोर्स में क्या है, अनेकांत स्यादवाद, अनेकांत अपरिग्रह, ये सिद्धांत हैं। आपको जहां से पढ़ना हो वहां से पढ़ना, हम तो इनके बारे में पूछेंगे। फिर नीचे लिख देते हैं सहयोगी पुस्तकें, माने आपका सिर्फ मार्गदर्शन के लिए कि जो हमारे ख्याल में है वो किताबें बता देते हैं, और ये जरूरी नहीं कि उन किताबों में से प्रश्न आएगा, आप और किताबों से भी पढ़ लें, लेकिन हम तो इस सिद्धांत के बारे में पूछेंगे। तो ऊपर की क्लासों में सिद्धांत रखे जाते हैं और नीचे की क्लासों में किताबें रखी जाती हैं। अकेले व्यवहार के उपदेश में कहते जैन शास्त्रों को पढ़ना, जैनेतर शास्त्रों को नहीं पढ़ना, और ये क्या कहते हैं अनेकांत को समझना, साधवाद को समझना, इसको समझना, उसको समझना, त्रिकाली दो भगवान आत्मा को समझना, तो अब कौन सी किताब को देख लेना जिसमें हो, अब अपने आप खोजो तुम किताब और उस किताब में से पढ़ो तुम अपने आप, तो फिर शास्त्र का स्वाध्याय तो अपने आप ही हो जाएगा। तो महावीर जयंती पर हमें भाषण देना है महावीर पे, तो आप वे कहते हैं कि तुम्हें तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ से भाषण देना है, कि महावीर पुराण पर भाषण देना है, ऐसा कोई कहता है क्या, महावीर पर देना है। अब कौन सी किताब पढ़ो, तुम किताब पढ़ोगे बिना किताब पढ़े दो हमें क्या मतलब है, اب جس کو دینا ہے کتابیں تو وہ کھوجتا پھرتا ہے، اب کسی سے پوچھے تو دو چار کتابوں کو نام بتا دے، وہ کئی کتابیں کہیں مل جائیں گی، دیکھ لینا۔ تو جب نشچے سہج ویوہار کا اپدیش دیتے ہیں تو سمیہ گیان کے ارتھ ہے، وہ بتاتے ہیں سات تتو سمجھنا، ترکاری دھرو سمجھنا، پر سے بھن پریا سے بھن سمجھنا۔ اور اب وہ کہاں سمجھنا، سمے سار کا بھی نام نہیں لیں گے، اب تم دیکھو جہاں ہوگا تو کھوج لینا۔ اور سمیک چارتر کے ارتھ راگادی دور کرنے کا اپدیش دیتے ہیں، کوئی کریا لینے کا نہیں دیتے ہیں۔ وہاں ایک دیش اور سروس تیو راگادی کا ابھاو ہونے پر ان کے نمت سے جو ایک دیش سروس پاپ کریا ہوتی تھی وہ چھوٹتی ہے، تتھا مند راگ میں شراوک منی کے ورتوں کی پروتی ہوتی ہے، اور مند راگ کا ہی ابھاو ہونے پر سدوپیوگ کی پروتی ہوتی ہے، اس کا نروپن کرتے ہیں۔ یتھارتھ سدھانت سہت سمیک دشٹیوں کے جیسے کوئی یتھارتھ آخری ہوتی ہے یا بھکتی ہوتی ہے، وہ پوجا پربھاونادی کاری ہوتے ہیں، وہ دھیانادک ہوتے ہیں، ان کا اپدیش دیتے ہیں۔ جن مت میں جیسا سچا پرمپرا مارگ ہے ویسا اپدیش دیتے ہیں۔ اس طرح دو پرکار سے چرنان یوگ میں اپدیش جاننا، یہ اسٹائل ہے۔ اب اور دیکھو دو پوائنٹ اور ہیں، اب یہ تو دو پوائنٹ نپٹے، اب دو الگ دو پوائنٹ ہیں۔ چرنان یوگ میں تیبر کسائیوں کا کار چھڑا کر مند کسائے روپ کاری کرنے کا اپدیش دیتے ہیں۔ دیکھو مند کسائے کرنے کا اپدیش دیتے ہیں، کسائے مند، کسائے مند کرو، کسائے مند کرو، ایسا اپدیش دیتے ہیں۔ اور ادھیاتم میں جا کے کہیں گے آخر مند کسائے بھی کسائے کا ہی بھید ہے نا، اکسائے کا بھید تھوڑی ہے۔ تیبر کسائے تیبر پاپ ہے، مند کسائے مند پاپ ہے۔ یہاں کہیں گے تیبر کسائے چھوڑنے یوگیہ ہے، مند کسائے کرنے یوگیہ مانے اپادے ہے، وہاں کہیں گے کسائے ماتر ہے ہے، لگایا نا۔ چرنانی یوگ میں تیبر کسائے کا کاری کر چھڑا کر مند کسائے کاری کرنے کا اپدیش دیتے ہیں، یدپی کسائے کرنا برا ہی ہے، تتھاپی سرد کسائے نہ چھوٹتے جان کر جتنے کسائے گھٹیں اتنا ہی بھلا ہوگا، ایسا پریوجن جاننا۔ باقی ڈیٹیل نیچے دیا ہے، اسے پڑھ لینا۔ اب آگے دیکھیں دوسرے پیرا میں، تتھا چرنان یوگ میں کسائی جیووں کو کسائے اتپن کر کے بھی پاپ چھڑاتے ہیں، کیا لگا دے گا؟ کسائی جیووں کو کسائے اتپن کر کے بھی پاپ چھڑاتے ہیں، لوگ تو آگ ببولا ہو جائیں گے۔ پہلے کیا کہہ رہے، کسائی جیووں کو، کون سے کسائی جی؟ یہ ہوں گے جو بکرے مکرے کاٹتے ہیں، یہ کسائی نام کی ایک جاتی ہوتی ہے نا، یہ ان کی بات ہوگی نا سرش چند جی، یہ کسانجوں کی بات ہے نا، یہ کسانجوں کی بات ہم سے کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی جس کے کسائے ہوں بے سب کسائی، تو ہمارے تمہارے یہاں کسائے ہے، ہم نے تم میں کرودھ مان مایا لوگ وغیرہ کسائے ہیں نا، تو ہم تم سب کسائی۔ اب ایک تو ہے کسائی جیووں کو، کسائی جیو کا مطلب سمجھ گئے نا، اور کسائے چھڑانے کے لیے کسائے کرنے کا اپدیش دیتے ہیں، ایک دوسری کسائے پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کسی کو لوبھ کسائے کی تیورتا تھی تو ایک پیسہ دان میں نہیں نکالتا تھا، کیوں؟ تو اس کو نرک کا بھے دکھایا، بیٹا پریگرہ میں مرے گا، نرکیشوری سو راجیشوری سو نرکیشوری، تو نرک کا بھے دکھا کر لوبھ چھڑایا۔ کبھی مان کسائے کو کھڑی کر کے اس کا لوبھ چھڑاتے ہیں کہ تو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، تیری برابری والوں نے کتنے کتنے لکھائے ہیں، اور تم لکھا تھا میرے گیارہ روپئے لکھنے، شرم نہیں آتی ہے کیوں؟ اسے مان کسائے پیدا کر کے اسے لوبھ چھڑاتے ہیں۔ تو ایک کسائے کو پیدا کر کے دوسری کسائے، تو آگے ہم نے بہت بحث کی کہ ایک کام تو اچھا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو لوگ تو راگ ہے، اور بھے اور مان تو دیش، تو راگ چھڑانے کے لیے دیش کرایا، یہ تو بہت برا ہے۔ وہ تو آنگریز ہی کہتے ہیں ये बच्चे हैं ना बच्चे, इनसे तीव्र राग है, तो कहते हैं कि ये धूर्तों की टोली है, ये सारथ के सगे साथी हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। क्यों जबकि ऐसा कुछ है नहीं, घबराना नहीं, क्यों? क्योंकि यदि बे हैं तो तुम भी तो वैसे ही हो, और बे तो तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते, बांटते नहीं है, ये बात कहां है? सुदारा हुए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, तो उनसे देश पैदा करा के राग तोड़ाते हैं। तो पंडित जी ने कहा ये तो अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं अच्छा है। कैसे अच्छा है? कि वो वहां बहुत तीव्रता से जुड़ा हुआ है, तो एक दफे दूसरी कसाय पैदा करके वहां से उसे चिगाए, तो वहां से हटके घर आए, तो ये तो हमने अभी नई पैदा कराई है कसाय, फिर बाद में इसका छुड़ाना तो आसान है, और वो जो तीव्रता से जमी हुई है उसका छुड़ाना बहुत कठिन है, तो बाद में इस दोष को छुड़ा देंगे। क्या कोई चीज खाने का इतने तीव्र लोग है, उसे रात्रि में खाने का, तो अभक्ष पदार्थ का खाने का, तो नरक निगूद का भय दिखा करके उसे छुड़ाते कि नहीं छुड़ाते? तो इस तरह से लिखाना तथा चरणान योग में कसाई जीवों को कसाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं, जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कसाय उत्पन्न करके पाप छुड़वाते हैं, पुण्य का फल स्वर्गाधिक सुख दिखाकर उन्हें लोभ कसाय उत्पन्न करके धर्म में लगाते हैं, तथा जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक से अनुराग से पाप करता है, धर्म परांगमुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेशादि के कारण बताकर उनमें अरति कसाय कराते हैं, शरीर आदि को असुचि बताकर वहां जुगुप्सा कसाय कराते हैं, पर लाद में थैली की कैसे बसा देते हैं मैली, हे कितना 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 जुगुप्सा कसाय है, निर्जुगुप्सा अंग है सम्मेलन का कराते हैं, पुत्रादिक को धनादिक का ग्राहक बताकर देश कराते हैं, ये तो धन के लुटे रहते, धन के पीछे पड़ा है ये सब। ऐसा लिखा है एक जगह कि पुत्र जैसा शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं है, कि क्यों? कि पैदा होते ही तो पत्नी को छीन लेता है, ऐसा लिखा शास्त्र में। जिस पत्नी का ध्यान पूरा अपनी तरफ रहता था, अब पुत्र के पैदा होते ही 90% तो उधर चला जाता है, 10% हुए तो हुए, जो हाथ में बराबर पानी का गिलास लिए खड़ी रहती थी, और अब वो आगे 3 दफे पानी मांगे तो जवाब ही नहीं दे, तो 80 दफे मांगे तो चिल्ला के बोले तुम 1 गिलास पानी पी के नहीं पी सकती, मैं बच्चे को दूध पिला रही, और बच्चे को तो दूध पिला रही और पति को पानी भी नहीं। मैथिली सेन गुप्त ने तो ऐसा लिखा है, पानी के ही पात्र तुम चाहे रुष्ट चाहे तुष्ट हो, लेकिन मैं तो कहता हूं पानी के पात्र का पानी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसने लिखा है कि पैदा होते ही तो पत्नी को छीन लेता है, पत्नी की जवानी को छीन लेता है, ऐसा लिखा, बड़ा होते ही तिजोरी पे कब्जा कर लेता है, सारी संपत्ति पे कब्जा कर लेता है, तो कहते इससे ज्यादा शत्रु और लुटेरा कौन होगा, ऐसा लिख के कहते हैं पुत्र से देश कराते हैं। वे जानते हैं इट इज नॉट फैक्ट, ऐसा है नहीं, लेकिन एक दफा उसके अंदर से जो तीव्र गृद्धता है तो वहां से छूटे तो, तथा धनादिक को मरण क्लेशादिक का कारण बताकर अनिष्ट बुद्धि कराते हैं, इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनकी पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिक से इस लोक में दारिद्र कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादिक की प्राप्ति होती है, इसका निरूपण करके लोग उत्पन्न कराते, और यहां तो बेटे को धूर्त बता दिया लुटेरा, और फिर कहते हैं पूजा पाठ करोगे तो बेटा पैदा होगा, लोग कोई बेटे का लोग देखा रहे, अब वो धूर्त पैदा नहीं करना तो काहे को, वो उतना ही था, माने उसी को उससे देश भी कराते हैं और उसका जो तीव्र लोभ है वो बता करके पूजा पाठ में लगाते हैं। तो वहां उसका ज्यादा लंबा अर्थ नहीं निकालना, बस जिसको छुड़ाना है सिर्फ उतना ही प्रयोजन समझना। यहां कोई प्रश्न करे कि कसाय छुड़ाकर कोई कसाय कराने का क्या प्रयोजन है, तो मैंने बता दिया कि तीव्र भयंकर ज्वर हो, सर्दी का सर्दी लग रही हो, तो गर्म दवा देकर एक दफे उसको गर्मी पैदा करते हैं, फिर तो बाद में गर्मी को भी शांत करने की दवा दे देंगे। तो ऐसे ही तीव्र कसाय का वेग हो उसको कम करने के लिए ऐसा करते हैं। इस तरह चरणान योग के कथन की स्टाइल हम नहीं जानेंगे तो हमको बहुत भ्रम खड़े हो सकते हैं। द्रव्यान योग की जो बात है वो तो मुख्य रूप से मैंने बोला कि द्रव्यान योग में मुख्य रूप से तो अध्यात्म है, और गौण रूप से मत मतांतर का खंडन मंडन भी इसमें आता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि सिद्धांत के हिसाब से द्रव्य व्यवस्था का सारा वर्णन द्रव्यान योग में आता है। उसके दो पार्ट हैं, एक द्रव्य व्यवस्था और एक तत्व व्यवस्था। वो तत्व व्यवस्था में अध्यात्म आ जाता है और द्रव्य व्यवस्था में वस्तु का स्वरूप आ जाता है। हम दूसरे तरीके से भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि उसमें एक न्याय शास्त्र और एक अध्यात्म। तो इस तरह से तीन चीजें, संपूर्ण न्याय शास्त्र, संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र और द्रव्य व्यवस्था वस्तु स्वरूप की व्यवस्था, ये सारा एरिया द्रव्यानी योग का आता है। इन तीनों में भी अलग अलग स्टाइल होगी। अब यह अध्यात्म है तो उसमें क्रियाकांड की निरर्थकता बताएंगे, भावों की प्रधानता पर बल देंगे, और अंदर में आत्मा को जानोगे तो भाव भी सुधरेंगे, और भाव सुधरेंगे तो क्रिया सुधरेगी। पहले स्टेप पे तो ये कहेंगे भाव सुधारो, भाव सुधरेंगे तो क्रिया सुधरेगी, और दूसरे स्टेप पे कहेंगे कि भाव को क्या सुधारना, तुम अपने त्रिकाली ध्रुव में जम जा तो भाव तो अपने आप ही सुधर जाएंगे, परिणाम की तरफ देखने की जरूरत ही क्या है, ख्याल में है ना। और इसमें पंडित जी ने बहुत विस्तार से अध्यात्म शास्त्रों के स्वाध्याय करने के तर्क युक्ति से सिद्ध किया है, और सभा में व्याख्यान करना अध्यात्म शास्त्रों का, इस बात को भी बहुत तर्क युक्तियों से उन्होंने सिद्ध किया है, हैं? और उसमें मूल तर्क उनका यही है कि असली आत्मा के कल्याण की चीज तो इन अध्यात्म शास्त्रों में है। देखो कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, अगर वो किसी चीज का निषेध करना हो ना, जैसे जैसे मान लीजिए कि गांव में कोई कार्यक्रम करना है और मैं मुझे नहीं बुलाना है उन्हें, तो अब लोग बात करेंगे कि साहब उनको बुला लो, उनको बुला लो। अब कोई कहेगा नहीं साहब हुकुमचंद जी को बुलाओ ना, वो बहुत अच्छे हैं। अरे साहब वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो कहाँ मिलेंगे, बड़े बड़े गांव को नहीं मिलते हैं, ऐसा उनके बुलाना तो है नहीं, तो उपलब्ध नहीं होंगे इस तर्क के आधार पर उसे टालेंगे, क्योंकि बुलाना नहीं है तो कोई सुनेगा नहीं। तो कोई खड़ा हो जाए कि मेरी गारंटी मैं लेके आऊंगा, आप नक्की तो करो, अब क्या करें, फंस जाए गले में, तो क्या करें भाई साहब, उनकी जो बड़ी बड़ी बातें किसकी समझ में आएंगी, आत्मा परमात्मा त्रिकाली ध्रुव, अपन को तो, अपन तो छोटे लोग हैं ना, अपन को तो छोटा ही पंडित चाहिए। अरे साहब वो बहुत समझदार हैं, ऐसी भरी सभा में थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो इतनी बढ़िया बातें बताएंगे कि तुम लोटते पड़ते खुश हो जाओगे, उदाहरण बढ़िया बढ़िया देते हैं और ऐसे बिल्कुल सब सबकी समझ में आएगा, ऐसा कहेंगे आप चिंता नहीं करो। अब क्या करें, यही तो बात है ना कि वो कहानी किससे उदाहरण बहुत देते हैं, मूल तत्व की बात बहुत कम आती है। मैडम सीधी ये बात नहीं कहेगा। ये जो साथ ऐसा होता है ना, यही अध्यात्म के साथ होता है। कभी तो ये ऊंची बातें हैं, कभी तो ये एमए की बातें हैं, इसके नाम पर उसे पढ़ने का निषेध करते हैं, कभी इसमें क्रियाकांड का निषेध है इसलिए ऐसा भ्रष्ट हो जाएंगे लोग, कभी इसके नाम पर निषेध करते हैं, कभी हम पात्र नहीं हैं तो इसके नाम पर निषेध करते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के लोग उस अध्यात्म का निषेध करते हैं अध्यात्म के प्रति अरुचि के कारण। पंडित टोडरमल जी ने उन सब की एक एक बात के जवाब इसमें दिए हैं, वो अपन पढ़ेंगे कल शाम को, उनको अच्छी तरह से देखेंगे कि वो क्या है, क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसकी चर्चा अपन शाम को करेंगे।